उफ, मैं सच में धोखा खा गया। आह, सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? अर्जुन अपने सिर को दोनों हाथों से सहलाते हुए बैठ गया। तभी एक आवाज आई, अर्जुन तुम आखिरकार जाग गए। तुमने मां को बहुत डरा दिया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मां क्या करती? इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, एक महिला आगे बढ़ी और उसे जोर से गले लगा लिया। वह रो रही थी। अर्जुन, मॉम। यह शब्द अर्जुन को बेहद परिचित लग रहा था, फिर भी अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका असली नाम तो अर्जुन ही था जब उसने साधना का मार्ग चुना था, लेकिन यह महिला उसे अर्जुन कहकर क्यों बुला रही है? उसकी असली मां तो हजारों साल पहले ही मर चुकी थी। क्या वह मर चुका है? क्या उस कमीने के हाथों मारा गया? क्या यह परलोक है जहां वह फिर से अपनी मां से मिल गया है? उस महिला की गर्मजोशी और ममता को महसूस करते हुए अर्जुन, जिसने हजारों वर्षों तक कठोर साधना की थी, एक बार फिर मां की गोद की वही पुरानी गर्माहट महसूस कर रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। हजारों सालों में उसने एक आंसू तक नहीं बहाया था। जब हजारों साल पहले उसके गुरु ने उसे चुना था और वह मां को छोड़कर साधना के मार्ग पर चला गया था, तब से वह निरंतर तपस्या में डूबा रहा। वर्षों बाद जब वह सफल होकर वापस लौटा तो वहां केवल एक टूटा फूटा मकान और एक छोटा सा समाधि पत्थर बचा था जिस पर लिखा था, मां की आत्मा को शांति मिले, बेटा शोक मत करना। उस दिन अर्जुन उस समाधि के सामने पूरा दिन रोया था। उसके बाद उसने फिर कभी आंसू नहीं बहाए, लेकिन आज मां की गोद की वही गर्माहट पाकर उसकी आंखें फिर भीग गईं। मां, अर्जुन ने बहुत धीमे स्वर में बुदबुदाया। उसने खुद को उस महिला के गले से अलग किया और सामने खड़ी उस आंसू भरी महिला को ध्यान से देखा। वह लगभग 40 साल की एक सुंदर महिला थी, लेकिन अच्छे रखरखाव के कारण 30 के आसपास की लग रही थी। उसे देखकर अर्जुन और भी उलझन में पड़ गया। ये मेरी मां नहीं है तो फिर ये कौन है और मुझे अर्जुन क्यों कह रही है? उसने उसके बगल में खड़े बाकी लोगों को देखा। एक और गरिमामयी मध्यम आयु की सुंदर महिला, एक परिपक्व और गंभीर दिखने वाले पुरुष जिनकी उपस्थिति से ही अधिकार झलक रहा था, और एक 15-16 साल की सुंदर व मासूम सी लड़की। उन सभी की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर अर्जुन की उलझन और गहरी हो गई। उसने पूरे कमरे का निरीक्षण किया और फिर उनके कपड़ों और माहौल पर ध्यान दिया। यह सब क्या हो रहा है? मैं आखिर हूं कहां? अर्जुन, क्या हुआ? क्या तुम मां को पहचान नहीं रहे? मुझे डरा मत दो, उस महिला ने फिर रोते हुए कहा। उसके चेहरे पर साफ चिंता थी और बाकी तीनों के चेहरों पर भी वही भाव थे। अर्जुन ने सोचा कि पहले हालात को समझना जरूरी है, इसलिए उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूं, बस अभी अभी होश में आया हूं, इसलिए थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं। ओह हां हां अर्जुन, तुम आराम करो, मां तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाती है ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। यह कहकर वह महिला उसे आराम से लिटाकर कमरे से बाहर चली गई। बाकी लोग भी धीरे धीरे बाहर निकल गए। कमरे में अकेले होते ही अर्जुन ने जल्दी से पास रखा आईना उठा लिया। आईने में दिखाई दे रहा चेहरा सुंदर और तेजस्वी था, लेकिन समस्या यह थी कि यह चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन ने झटके से आईना नीचे रख दिया और बिस्तर पर लेट गया। उसका मन पूरी तरह उलझन में डूब चुका था। यह सब क्या है? क्या मेरी आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश कर गई है? तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा और किसी बाढ़ की तरह ढेर सारी जानकारी उसके मस्तिष्क में भरने लगी। कुछ ही देर में दर्द कम हो गया और अर्जुन बहुत कुछ समझ चुका था। असल में इस शरीर के असली मालिक का नाम भी अर्जुन ही था। वह आधुनिक समय में एक अमीर और प्रभावशाली परिवार का बेटा था। उसके दादा याशवांत के 3 बेटे और 1 बेटी थे। याशवांत कभी देश के एक बहुत बड़े अधिकारी रह चुके थे। भले ही अब वे रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनके शिष्य पूरे देश में फैले हुए थे, इसलिए उनका प्रभाव आज भी कायम था। अर्जुन के पिता महेश सिंह एक मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे और यह परिवार राजनीति और प्रशासन दोनों में गहरी पकड़ रखता था। अब अर्जुन समझ चुका था, यह कोई परलोक नहीं था बल्कि एक नया जीवन था और शायद एक नया भाग्य भी। अर्जुन के पिता महेश सिंह एक मंत्रालय के सचिव थे और उसकी मां कोमाल वलोंग कमर्शियल ग्रुप की चेयरमैन थीं, जिनका व्यापार मॉल्स, होटल्स और रियल एस्टेट में फैला हुआ था। उसके दूसरे चाचा सिंह जी और तीसरे चाचा माहीपाल सिंह क्रमशः विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में मंत्री थे। उसकी बुआ सावित्री की शादी सनशाइन सिटी के मेयर जसप्रीत से हुई थी। उनका भी सनशाइन सिटी में एक रियल एस्टेट बिजनेस था। अर्जुन इस पूरे सिंह फैमिली का एक लौता बेटा था, इसीलिए वह पूरे परिवार का दुलारा था। राजधानी में उसका काफी रुतबा था, इसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। उसने न जाने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा था और कितने झगड़े किए थे। एक बार जब वह हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में था, उसने ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के एक छोटे अधिकारी की बेटी को गर्भवती कर दिया था, लेकिन क्योंकि वह अधिकारी छोटा था, वह कुछ नहीं कर पाया। परिवार ने अर्जुन को सुधारने के लिए उसे सनशाइन सिटी में उसकी बुआ के घर भेज दिया। अर्जुन का यह हाल उसकी चचेरी बहन गीता की वजह से हुआ था। सनशाइन के डिप्टी मेयर का बेटा राघव उसे छेड़ रहा था और अर्जुन ने उसकी रक्षा की थी। हालांकि खुद बिगड़ा हुआ था, लेकिन अपने लोगों के लिए उसके दिल में सच्ची भावनाएं थीं। लेकिन राघव ने उसे बुरी तरह पीट दिया। राजधानी में कोई उसकी पृष्ठभूमि जानता था, इसलिए कोई छूता नहीं था, लेकिन यहां उसकी पहचान छिपाई गई थी। नतीजतन वह बुरी तरह पिट गया था। अब उसकी मां उसे देखने आई थी और वही दृश्य थोड़ी देर पहले हुआ था। हालांकि यह शरीर काफी दुर्भाग्यशाली था, फिर भी अब स्थिति यही थी। वैसे भी इमॉर्टल रेल्म में हजारों साल जीने के बाद अब इस नए जीवन को जीना उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन इस शरीर की हालत बहुत खराब थी। रक्त और ऊर्जा दोनों की भारी कमी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कुछ ही वर्षों में महिलाओं और गलत आदतों की वजह से मर सकता था। उसे अपनी सेहत सुधारने के लिए कुछ औषधियां बनानी होंगी। अब यह शरीर उसी का था। बिस्तर पर लेटे हुए अर्जुन इस दुनिया के बारे में सोचने लगा। यह दुनिया सच में बहुत मजेदार थी और यहां की सुंदरियां भी। वह अब भी हाई स्कूल में था और उसकी बेंचमेट भी एक स्कूल ब्यूटी थी, जो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। 6 महीनों में बोर्ड परीक्षा थी, ठीक वैसे ही जैसे पुराने समय में राजकीय परीक्षाएं हुआ करती थीं। उसने सोचा कि यहां आकर पहले ही टॉप करना चाहिए। अगले दिन उसने मां की सलाह न मानते हुए अपनी कजिन के साथ स्कूल जाने का फैसला किया। नई दुनिया इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदरियां थीं, फिर वह घर पर बैठकर कैसे रह सकता था। कार में बैठते ही वह पहली बार इस दुनिया के इंसानों की प्रतिभा से प्रभावित हुआ। लोहे से बनी ये गाड़ियां कितनी तेज और आरामदेह थीं। उसे भी बाद में एक कार खरीदनी थी। हालांकि राजधानी में उसके घर पर कई कारें थीं, लेकिन सनशाइन सिटी में नहीं। यहां उसकी आर्थिक सहायता भी सीमित कर दी गई थी। कजिन, उस दिन के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हें चोट लग गई। चलो दोपहर में मैं तुम्हें एक शानदार भोजन कराता हूं, गीता ने कार चलाते हुए कहा। पहले वह अपने इस कजिन को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह उसे एक आवारा और औरतबाज समझती थी, लेकिन इस घटना ने उसकी राय थोड़ी बदल दी थी। कुछ नहीं कजिन, अगर तुम्हारे लिए मार भी खानी पड़े तो चलता है, लेकिन सुनो, उस दिन मैं फॉर्म में नहीं था, नहीं तो उस राघव को उसकी मां तक पहचान न पाती, अर्जुन ने बड़े गर्व से कहा। ही कजिन, अब बस भी करो, मुझे तुम्हारे कर्तव्यों का खूब पता है, गीता ने हंसते हुए कहा। क्या तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानती हो? बिल्कुल, और आगे उस राघव से उलझने की जरूरत नहीं है। उसका बाप डिप्टी मेयर है, वरना वह तो कब का पिट चुका होता। अगर तुम फिर घायल हुए तो आंटी बहुत दुखी होंगी। तुम लोग बस मेरी बाहरी छवि देखते हो, असली में कितना दमदार हूं वह तुम क्या जानो, अर्जुन ने नकली दुखी स्वर में कहा। ही तुम में चमकदार गुण भी हैं। अच्छा है, इन्हें अपनी होने वाली बीवी के लिए बचाकर रखो, गीता ने मजाक में कहा। कार धीरे धीरे सनशाइन हाई स्कूल के गेट के अंदर घुसी। यह सनशाइन का एक प्रतिष्ठित हाई स्कूल था। यहां पढ़ने वाले छात्र या तो अमीर थे या प्रभावशाली परिवारों से आते थे, और निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी थे जो पढ़ाई में अत्यंत उत्कृष्ट थे। ऐसे छात्रों के लिए स्कूल में कई तरह की फीस माफी और छूट दी जाती थी। इन होनहार लेकिन गरीब छात्रों के लिए इस स्कूल में पढ़ना साधारण हाई स्कूल से भी सस्ता था। अर्जुन ने स्कूल के सुंदर नजारे देखे। हर तरफ युवा और प्यारी लड़कियां दिखाई दे रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ फैलाए और गहरी सांस ली। आह, जवानी कितनी अच्छी होती है, जिंदा रहना कितना अच्छा है। दिमाग में मौजूद यादों के सहारे वह अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ा। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। यह एक बिल्कुल नया जीवन था, जीने की एक नई चाह। लेकिन उसे जो चीज हैरान कर गई वह यह थी कि रास्ते में मिलने वाली लड़कियां उसे देखकर रास्ता बदल लेती थीं। अर्जुन असल में कुछ सुंदर लड़कियों से बातचीत करना चाहता था, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहता वे दौड़ जाती थीं। थोड़ा सोचने पर उसे समझ आ गया कि असली वजह क्या थी। यह लड़का स्कूल में बदनाम था, एक बदमाश और आवारा किस्म का लड़का। इसलिए सभी उससे डरती थीं और उसे देखकर दूर भागती थीं, कहीं वह नुकसान न पहुंचा दे। कुछ ही समय में उसका अच्छा खासा मूड खराब हो गया। वह निरुत्साहित होकर क्लासरूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह क्लासरूम में घुसा, सबने ऊपर देखा और जैसे कोई भूत देख लिया हो तुरंत रास्ता छोड़ दिया। धत तेरी कि इससे अच्छा तो मर जाना होता। अब समझ में आ गया कि यह लड़का कैसे रह रहा था। उसने अपनी सीट खोजी और देखा कि उसके बगल में बैठी लीजेंडरी स्कूल ब्यूटी ने सिर तक नहीं उठाया। अर्जुन चुपचाप बैठ गया और चारों तरफ नजर डाली। उसने देखा कि बाकी सभी छात्रों के डेस्क किताबों से भरे हुए थे, लेकिन उसकी अपनी डेस्क बिल्कुल खाली थी। उसने डेस्क का ढक्कन खोला, वहां भी कुछ नहीं था। अचानक उसके भीतर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। वह खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, मेरी किताबें कहां हैं? शोरगुल से भरा क्लासरूम एक पल में पूरी तरह शांत हो गया। सभी ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे अपनी अपनी किताबों में नजरें गड़ा ली। अर्जुन ने नीचे देखा तो पाया कि स्कूल ब्यूटी उसे देख रही थी। उसने थोड़ा संयम रखते हुए पूछा, मेरी किताबें कहां हैं? स्कूल ब्यूटी ने उसकी उलझन भरी नजर देखी, जो बिल्कुल भी नकली नहीं लग रही थी, और शांत स्वर में बोली, तुम कभी किताबें लेकर क्लास में नहीं आते थे? यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा लाल हो गया और वह शर्मिंदगी से भर गया। उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। गुस्से में तो उसका मन कर रहा था कि वह सीधे इमॉर्टल रिल्म वापस चला जाए। धत तेरी, पढ़ाई करने का यही तरीका था क्या? किताबें तक नहीं लाते थे और इसकी यादें भी नहीं हैं। लगता है पढ़ाई से इतनी नफरत थी कि सब कुछ भुला दिया, उसने मन ही मन सोचा। वह थका हुआ और कमजोर सा अपनी सीट पर बैठ गया। उसे लगने लगा कि वह पूरी तरह हार चुका है। अब वह समझ चुका था कि यह लड़का इस दुनिया में पूरी तरह से खोया हुआ था, जैसे उसका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा हो। शिवंगी, जो उसकी डेस्कमेट थी, उसे इस हाल में देखकर थोड़ी हैरान हुई। उसे लगा कि अर्जुन पहले से कुछ अलग लग रहा है। थोड़ी झिझक के बाद उसने अपनी किताबों के ढेर में से एक किताब निकाली और अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इसे पढ़ लो। अर्जुन एक पल के लिए चौंक गया। उसकी यादों में शिवांगी कभी उस पर ध्यान नहीं देती थी। उसने किताब ली और हल्के से कहा, थैंक यू। वह जानता था कि इस समय ज्यादा जोश दिखाना ठीक नहीं होगा, वरना उसे लगेगा कि वह जबरदस्ती नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। उसे पहले उसकी नजर में अपना इंप्रेशन बदलना था। दूर रहकर दिल जीतना ही सही तरीका था। वह एक हिस्ट्री की किताब थी। अर्जुन ने किताब खोली तो उसमें से हल्की सी खुशबू आई। जिससे साफ पता चलता था कि शिवंगी इसे अक्सर पढ़ती थी। इससे यह भी साबित होता था कि वह सच में एक टॉपर थी। अर्जुन बहुत तेज पढ़ता था और जो भी पढ़ता था उसे याद कर लेता था। एक कल्टीवेटर होने के नाते यह उसकी सहज क्षमता थी। हालांकि अब वह इमॉर्टल नहीं था, फिर भी उसकी कुछ क्षमताएं अब भी मौजूद थीं। बस शरीर बहुत कमजोर था। अगर वह कुछ दवाइयां बनाकर शरीर को ठीक कर ले तो फिर से साधना शुरू कर सकता था। यही तो एक एल्केमिस्ट होने का असली फायदा था। जब शिवांगी ने अर्जुन को इतने सरसरी तरीके से पढ़ते देखा तो उसने सोचा कि शायद औरतों की छठी इंद्रिय कभी कभी गलत भी हो सकती है। उसे लगा था कि शायद अर्जुन बदल गया है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फिर उसे यही महसूस हुआ कि नहीं, वह अब भी वही बर्बाद किस्म का लड़का है। 10 मिनट बाद अर्जुन ने किताब पूरी पढ़ ली और शिवांगी को वापस करते हुए कहा, बाकी सब्जेक्ट्स की किताबें भी दे सकती हूं। शिवांगी ने पॉलिटिक्स की किताब उसे दे दी। 10 मिनट के अंदर वह किताब भी खत्म हो गई। इसके बाद उसने इंग्लिश की किताब मांगी, लेकिन कुछ ही पन्ने पलटने के बाद उसने किताब वापस कर दी। क्या हुआ? शिवांगी ने हैरानी से पूछा। समझ नहीं आया, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, दूसरी किताब दो। तो पिछली दोनों किताबें समझ में आ गईं? शिवांगी ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिला दिया। क्या तुमने उन्हें याद भी कर लिया? उसने फिर पूछा। अर्जुन ने एक बार फिर सिर हिला दिया। यह देखकर शिवांगी को सच में विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हें हिस्ट्री का एक सवाल पूछती हूं। शिवांगी ने सवाल पूछा और अर्जुन ने बिना एक पल गनवाए जवाब दे दिया, साथ ही उस पेज का नंबर भी बता दिया। शिवांगी ने तुरंत किताब खोली। जवाब भी सही था और पेज नंबर भी। उसने और सवाल पूछे जिनका जवाब अर्जुन ने उतनी ही सटीकता से दिया। अब शिवांगी उसे ध्यान से देखने लगी। कहीं तुमने ये सब पहले से याद तो नहीं कर रखा? उसने शक के साथ पूछा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे चिपकने के लिए इतना झूठ बोलूंगा? अर्जुन ने ठंडी और सीधी आवाज में कहा। यह सुनते ही शिवंगी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हुम्फ, कौन जानता है तुम्हारा इरादा क्या है? उसने झेपते हुए कहा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी याद करने का तरीका सिखा सकता हूं। हुम्फ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, शिवांगी ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि अंदर ही अंदर वह थोड़ी उत्सुक जरूर हो गई थी। अर्जुन ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिका ली और शिवांगी को चुपचाप देखने लगा। उसका गोरा चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। वह मन ही मन सोचने लगा कि वह कितनी सुंदर है। काश एक काट ही लेता। दोनों चुपचाप बैठे थे। एक किताब पढ़ रही थी और दूसरा उसे निहार रहा था, जैसे कोई पुल पर खड़ा होकर नजारे देख रहा हो और कोई दूर किसी इमारत से उसे देख रहा हो। शायद वही एहसास था। शिवंगी ने उसकी नजरों को महसूस कर लिया और गुस्से में बोली, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें, अर्जुन ने बेहद सीधे और सरल अंदाज में जवाब दिया। यह सुनते ही शिवांगी ने गुस्से में मुंह फेर लिया और पढ़ाई करने लगी। अर्जुन ने मस्ती में पूछा, क्या तुम गुस्से में हो? हां, क्यों? क्योंकि तुम बहुत परेशान करते हो। लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। तुम मुझे इस तरह घूरना बंद करो। ठीक है, अर्जुन ने तुरंत कहा, फिर मुझे कुछ और किताबें दे दो ताकि मैं पढ़ाई करूं और तुम्हें ना देखूं। शिवांगी ने बिना कुछ बोले उसे और किताबें दे दीं। इस बार अर्जुन ने सच में पढ़ाई शुरू कर दी। सुबह से दोपहर तक वह लगभग आधी किताबें खत्म कर चुका था। दोपहर का समय होते ही उसकी कजिन गीता उसे लंच के लिए बुलाने आ गई। वे दोनों कैंपस से बाहर निकले और एक अच्छे से रेस्तरां में चले गए। उन्होंने कुछ डिश ऑन ऑर्डर की और बैठ गए। खाते हुए अर्जुन ने पर, कजिन, तुम दोपहर में क्लास में जाओगी? हां, गीता ने जवाब दिया। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम अपनी कार मुझे दे सकती हो? अर्जुन ने पूछा। नहीं, गीता ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। क्यों? वह कार मेरी जान है। मैं उसे ऐसे किसी भी लड़कीबाज के हाथों नहीं दूंगी जो लड़कियों को घुमाने के लिए मेरी कार का इस्तेमाल करे। और फिर तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, बोर्ड परीक्षा आने वाली है, मैं आज रात आंटी को सब बता दूंगी। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं लड़कियां घुमाने नहीं जा रहा, आज मैंने लगभग सारी किताबें याद कर ली हैं, अब मुझे दवाइयां खरीदनी हैं ताकि सेहत संभाली जा सके और बोर्ड परीक्षा में टॉप किया जा सके, एकदम फर्स्ट रैंक के साथ। गीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। गिगल, कजिन, मुझे पहले पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे वक्ता हो। भले ही तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी और तर्क संगत लगती हों, फिर भी मैं तुम्हें कार नहीं दे सकती। अगर सच में दवा ही खरीदनी है तो आसपास हर जगह फार्मेसीज हैं, इसके लिए कार की क्या जरूरत? अर्जुन ने उसके इनकार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और समझाते हुए बोला, मैं कोई साधारण दवाइयां नहीं लेने जा रहा, मुझे कीमती औषधीय जड़ी बूटियां खरीदनी है, इसलिए मुझे सबसे बड़ी और सबसे पुरानी फार्मेसी में जाना पड़ेगा। टीच कजिन, गीता ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कंजूस समझती हूं, लेकिन औषधीय जड़ी बूटियां कोई साधारण चीज नहीं होती, यह बेहद मुनाफे वाला धंधा है। तुम्हारे जैसे नौसिखिए को तो लोग मिनटों में लूट लेंगे। अर्जुन को समझ आ गया कि उसे मनाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, बस देख आऊंगा। बताओ, सनशाइन सिटी में सबसे बड़ी ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन शॉप कहां है? तुम वाकई जाना चाहते हो? गीता ने फिर पूछा। अर्जुन ने सिर हिला दिया। ईस्ट स्ट्रीट पर है, उसने कहा, वहां ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन शॉप है, टैक्सी लेकर पहुंच सकते हो। कार तो मैं नहीं दूंगी, बस 10 मिनट की दूरी है, लेकिन ध्यान रहे, कुछ भी यूं ही मत खरीद लेना, धोखा खा जाओगे। भले ही हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी दूसरों को बेवकूफ बनने का मौका नहीं देना चाहिए। समझ गया, अर्जुन ने कहा, मैं बस देखने जा रहा हूं, अगर कुछ करना ही है तो फिर क्लास में क्यों नहीं हो? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। खाने के बाद वह टैक्सी लेकर ईस्ट स्ट्रीट निकल पड़ा। ईस्ट स्ट्रीट सनशाइन सिटी और पूरे दक्षिणी प्रांतों का सबसे बड़ा नेशनल एसेंस स्ट्रीट था। यहां प्राचीन वस्तुएं, कलाकृतियां, पारंपरिक दवाइयां, वाद्य यंत्र, पोशाकें और नाट्य कला से जुड़े उत्पाद हर तरफ भरे पड़े थे। यहां ज्यादातर अमीर, शक्तिशाली लोग या निवेशक ही आते थे। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। माहौल देखकर उसे लगा मानो वह किसी प्राचीन बाजार में वापस आ गया हो। दूर से ही एस के ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन शॉप का साइन बोर्ड दिखाई दिया। वह उसकी ओर बढ़ा, तभी सड़क के किनारे एक लग्जरी कार आकर रुकी। अर्जुन की यादों के अनुसार यह एक बेंटली थी, एक मशहूर विदेशी लग्जरी कार ब्रांड। जैसे ही वह कार को ध्यान से देखने वाला था, उसमें से एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला उतरी। उसकी उम्र लगभग 25-26 साल रही होगी। उसने काले रंग का प्रोफेशनल सूट पहना था जो उसके आकर्षक फिगर को साफ उभार रहा था। कमाल है, ये तो सचमुच की हॉट ब्यूटी है, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। शिवांगी और गीता जैसी मासूम लड़कियों से बिल्कुल अलग एक परिपक्व और आत्मविश्वास से भरा आकर्षण। वह महिला बिना उसकी ओर देखे सीधे एस के फार्मेसी में चली गई। उसके पीछे ड्राइवर और बॉडीगार्ड ने अर्जुन को घूर कर देखा, लेकिन उसे एक छात्र समझकर कुछ नहीं कहा। अर्जुन भी बेफिक्र अंदाज में फार्मेसी के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने महिला की मधुर आवाज सुनी, बिल्कुल वसंत हवा जैसी। ग्रैंडपा अथोरे, यह मेरे दादाजी के लिए एक पुराने डॉक्टर द्वारा लिखा गया नुस्खा है, कृपया इसे देखिए और अगर सब कुछ सही लगे तो दवा तैयार कर दीजिए। महिला ने यह कहते हुए नुस्खा एक बुजुर्ग व्यक्ति को थमा दिया। वह लगभग 60 से 70 वर्ष के थे, सफेद बाल, मजबूत कदकाठी और आंखों में वर्षों का अनुभव झलक रहा था। ओल्ड मिस्टर, राठौरे ने नुस्खे को ध्यान से पढ़ा। कुछ पल तक चुप रहने के बाद उन्होंने संतोष भरी आवाज में कहा, यह नुस्खा बहुत अच्छा है मिस, क्या आप बता सकती हैं कि यह किस प्रसिद्ध डॉक्टर द्वारा लिखा गया है? ये मिस्टर केशव ने लिखा है, जो एस के यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के प्रेसिडेंट हैं, महिला ने उत्तर दिया। ओह अच्छा, ओल्ड मिस्टर, राठौर ने आश्चर्य से पूछा, तो आपने मिस्टर केशव को सनशाइन बुलाया था? वह किसी काम से सनशाइन आए थे, एक दोस्त ने उनका परिचय कराया तो मैंने उन्हें दादाजी को देखने के लिए आमंत्रित कर लिया, महिला ने समझाया। बहुत बढ़िया, ओल्ड मिस्टर राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है इससे ओल्ड मिस्टर यांग को राहत मिलेगी, अभी तो वे नहीं मरेंगे। इसी पल एक बेहद असंगत सी आवाज गूंजी, सबने पलट कर देखा, अर्जुन पास ही खड़ा था और नुस्खे को ध्यान से देख रहा था। महिला ने गुस्से से उसकी ओर देखा और ड्राइवर व बॉडीगार्ड ने भी अनजाने में अपने हाथ कस लिए। अगर वह एक छात्र न होता तो शायद उसे वहीं सबक सिखा दिया जाता। ओल्ड मिस्टर राठौर ने भी जिज्ञासा से अर्जुन को देखा, हालांकि वह सादे धूल मिट्टी लगे कपड़े पहने था, लेकिन उसके भीतर एक ठहराव और गंभीरता थी जो उसकी उम्र के लड़कों में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। छोटे भाई, ओल्ड मिस्टर राठौर ने पूछा, क्या तुम इस नुस्खे को समझते हो?
नहीं, बस यूं ही देख रहा था।
बकवास कर दी, ध्यान मत दीजिए, अर्जुन ने लापरवाही से कहा। कोई बात नहीं, ओल्ड मिस्टर राठौर ने शांति से कहा, अगर तुम्हें कुछ समझ में आया हो तो बताओ, अगर नुस्खे में सचमुच कोई समस्या होगी तो हम उसे सुधार सकते हैं। उनकी आवाज में ईमानदारी थी। अर्जुन ने नुस्खा हाथ में लिया, एक बार ध्यान से पढ़ा और फिर बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मरीज को एंजिना पेक्टोरिस अरिथमिया, हार्ट फेलियर और कभी कभी बुखार, उल्टी और मतली भी होती है, और उसकी हालत अब काफी कमजोर हो चुकी है। उसने यह कहते हुए महिला की ओर देखा। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। सिर्फ नुस्खा देखकर इतनी सटीक स्थिति बता देना अविश्वसनीय था। महिला ने तुरंत चिंता भरी आवाज में पूछा, हां हां हां, कि क्या सच में नुस्खे में कोई समस्या है? अर्जुन ने धीरे से कहा, नुस्खे में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह मरीज की वर्तमान हालत के अनुकूल नहीं है। राठौर जी, एस्ट्रागलस की मात्रा ज्यादा है, इसे 3 ग्राम से घटाकर 1 ग्राम कर देना चाहिए। कमजोर शरीर टॉनिक सहन नहीं कर सकता। नुस्खा अच्छा है, लेकिन आपके दादाजी के लिए बहुत भारी है। इस नुस्खे से मौत टाली जा सकती है, पर रोकी नहीं जा सकती। यह सुनते ही महिला का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में घबराहट साफ झलकने लगी। वह तुरंत बोली, सर, क्या आप मेरे दादाजी का इलाज कर सकते हैं? अर्जुन ने बेहद गंभीर स्वर में कहा, देखिए, मैं मरीज की हालत को कंट्रोल नहीं करता, जब तक उनके शरीर में जान है मैं उन्हें पूरी तरह ठीक कर सकता हूं। यह सुनकर महिला और घबरा गई और तुरंत बोली, माफ कीजिए सर, मैं घबराहट में गलत बोल गई थी। ओल्ड मिस्टर राठौरे भी अर्जुन की बातों और आत्मविश्वास को देखकर चकित रह गए थे। महिला एट ने फिर से आग्रह किया, तो क्या आप मेरे दादाजी का इलाज कर सकते हैं? अर्जुन ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, पहले घमंड से भरी हुई थी, अब कितनी विनम्र बन गई है। नहीं, अर्जुन ने साफ शब्दों में मना कर दिया। क्यों? महिला ने बेचैनी से पूछा। क्योंकि अगर तुरंत ठीक कर दिया तो दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, महिला ने जल्दी से कहा, मैं बड़ी फीस दूंगी। ओह, अर्जुन ने पूछा, बताओ कितनी फीस? महिला ने एक उंगली उठा दी, 100 मिलियन। अर्जुन थोड़ा चौंका, लेकिन फिर गंभीर होकर बोला, मैंने अभी हां नहीं कहा है। आप इतने लालची भी ना बने, अगर ऐसा है तो फिर आपको इलाज नहीं चाहिए। उसकी आवाज में पूरी निस्पृहता थी। महिला ने जल्दी से कहा, तो आप बताइए आपको कितना चाहिए? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, पहले एक बात समझो, तुम मुझसे इलाज की भीख मांग रही हो, मैं तुमसे नहीं। अगर तुम्हें वाकई अपने दादाजी को बचाना है तो चाहे 10 मिलियन देने पड़े तुम दोगी? महिला ने दांत भींचते हुए कहा, मेरे दादाजी की जान पैसों से नहीं तोली जा सकती। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, तो इसका मतलब है कि तुम एक सच्ची पोती हो, लेकिन यह मत समझो कि सब लोग तुम्हारी तरह लालची हैं।